اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ان کو پیکج دے رہے ہیں. کتنے بھی تنقید نہ کیا کرو بلکہ واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. آج کچھ بھی کرتے ہیں نا تو آگے بھیج دے رہے ہیں. حضرت ابو ذر سے کسی نے کہا کہ ابو ذر آپ کے گھر میں سامان کیوں نہیں ہے, تھوڑا تو ضرورت کا کم ہوگا. پوچھنے لگا مقصد کیا تھا کہ ضرورت سے زائد یا کوئی ایکسٹرا کوئی خوبصورت کا چیز کچھ نہیں. کہنے لگے وہ میں نے دوسرے گھر میں بھیج دیا. کہا اچھا یہاں کیوں نہیں رکھتے. کہا یہاں کا مالک مجھے ادھر رہنے نہیں دیتا. کیوں تجدو عند اللہ, جن کو یقین ہے نا کہ میرا گھر آگے بن رہا ہے وہ یہاں ایک پینی کی بھی چیز اپنے گھر میں فالتو نہیں رکھیں گے, کیونکہ میرے پاس اس پینی سے اس ایک چیز کو خریدنے کی بجائے اس پینی کو کسی جگہ ڈونیشن میں ڈال دوں تو یہ میرا صدقہ جاریہ بن جائے گا. اگر یہ کرائیٹیرین ہم سب کا بن جائے, نہ ہمارے گھر گندے ہوں, نہ ایکسٹرا چیزیں ہمارے گھر میں آئیں, اور نہ ہم سارا دن ان کی غلامیاں کرتے رہیں. ایک رب کی غلامی بہت ہے. یہ کرسیوں میزوں چمچوں ڈشوں ڈونگوں کی غلامی کر کے کیا ملے گا؟ ان بتوں نے کیا دیا آج تک آپ کو؟ دیکھیے بت کو انسان کی شکل میں پوج لیں یا آپ اس کو کسی پتھر کے برتن کی صورت میں بنا لیں, اگر دل ہی اس میں اٹکا ہوا کہ ہائے اب مہمان, اور مہمان غریبوں کو کھلاتے پھر ہم کاغذ کے برتنوں میں. جتنی مجھے انسلٹنگ یہ بات لگتی ہے واللہ ہی کوئی اور نہیں لگتی. اور مہمان دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی الماریوں میں کتنے خوبصورت برتن پڑے ہوئے ہیں, کیا کریں دھونے پڑیں گے. یعنی پہلے ہی مہمان کو بتا دیا کہ آپ کے آنے کی بس اتنی کوئی خوشی ہے کہ ہم پلاسٹک کی پلیٹ میں آپ کو کھلائیں گے. واللہ ہی میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ پتہ نہیں آپ کے گھر 50 مہمان ہیں 50 پلیٹیں نہ ہی ہوں, لیکن میں ایک جنرل آپ کو فیلنگ دے رہی ہوں کہ اگر ہیں تو استعمال کیجیے, اور نہیں ہے تو شکر کریں پھر تو روز ہی پلاسٹک استعمال کریں اور ختم کر دیں. ریئلی اس رمضان کے لیے ایک چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں تھی یہی بات کہ گھر کے برتنوں میں سے صرف وہ برتن, یہ صرف آپ کو میں ایک مشورہ دے رہی ہوں, خدا کے لیے اس کو قانون نہ بنائیے گا اور اس سے ناراض بھی نہ ہوا کریں, لیکن یہ باتیں صرف ایک انسان کے دل میں کب آتی ہیں؟ جب اس کو کچھ کرنا ہے. اگر میں کچھ کر ہی نہیں رہی, بیکار بستر توڑنا ہے تو اچھی بات ہے روز صاف کپڑے بھی پہنوں بدل بھی لوں کپڑے, اور اگر میں نے بیٹھ کے صرف گھنٹوں فون پہ باتیں کرنی ہیں بہت اچھی بات ہے, میں کھاؤں پکاؤں کروں. دیکھیں کہ یہاں کپڑے نہ بدل کے یا کپڑوں کو نئے سے نئے رنگ کے نکالنے کی بجائے میں نے باقی وقت میں کچھ کیے پھر تو یہ اچھی بات ہے. تو اگر اور کچھ نہیں کرنا تو کم از کم وہی کر لو, دنیا کا سمجھ جائے وہی کر لیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وما تقدموا لانفسکم, اس پہ نظر رکھیے کہ میں نے اپنے آگے کیا بھیجنا ہے. اور یاد رکھیے جو لوگ عمل نہیں کرتے نا وہ سب سے زیادہ خوش فہمیوں میں ہوتے ہیں. ایسی خوش فہمی کا ذکر, ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں, اللہ نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم جنت میں جاؤ گے. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت اور نہ کسی اور کی, حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک رویش اختیار کرے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا. یہ ہے بندگی. خوش فہمیوں سے نکلو, اچھے کام کرو, پھر اب سے اچھی اچھی امیدیں رکھو, پھر تمہاری زندگی لا خوف ہوگی. اگر آپ اس آیت کے عربی لفظوں کو دیکھیے تو تین چیزیں ہائی لائٹ کر لیجئے, بلا من اسلم, اسلم کا لفظ یعنی وجہ ہو, کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے, پہلے بندہ مسلم ہوتا ہے, اور وجہ ہو للہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرتا ہے, وہی بات ہے کہ والقلب متوجہ ہونے للہ, اور چہرے کو رب کی طرف جھکانا, چہرہ جس طرف آتے ہیں ادھر پورے کے پورے آ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہی رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, کسی کی کو بڑی بات سن کے ایک دم کمپلیکس میں بھی نہ جایا کریں کہ ہائے ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہائے فلاں تو ایسا نہیں. پہلے من اسلم, پہلی سیڑھی, پھر دوسری, پھر تیسری, وہو محسن, پھر آخری سیڑھی احسان, سب سے آخری درجہ ہوتا ہے تقوی کا. اس کے بیچ میں کتنی سیڑھی ہیں. ہم تقوی لینا چاہتے ہیں نا یا بندگی ہے, تو چھوٹے سٹیپس لیں, فرسٹ سٹیپ سے شروع کریں, کوئی چھلانگ مار کے اوپر نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا کے کہ محسن بنو, تو دوسرا لفظ ہے محسن. نتیجہ کیا ہے, واٹ از دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف بینگ مسلم اینڈ محسن؟ لا خوف علیہم, نہ خوف ہوگا. वलाम यहज़न। दुनिया पैनिक है, दुनिया परेशान है, दुनिया घबराई हुई है, दुनिया में जंग की खबरें हैं, दुनिया के पास पैसे नहीं, जॉब नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, बच्चे नहीं, जो भी उनके गम है, मुस्लिम से मोहसिन बन जाइए, फिर आप देखिए कि आपको क्या मिलता है। फिर आपकी ज़िंदगी में बंदगी का वो रंग आता है कि आप इंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग जो दुनिया को बहुत अपने इस ख्याल में इंजॉय करते हैं, तो वो ख़ास तौर पे किताब से जुड़े हुए लोगों और दीन का काम करने वालों को कहते हैं इनकी ज़िंदगी कितनी फीकी है। मैं सोचती हूँ कि चले अच्छा इनको ना ही पता चले कि ज़िंदगी कैसी है। क्योंकि वो किसी की बात बड़ी खूबसूरत मैंने सुनी और उन्होंने कहा कि जो तहज्जुद गुजारों या अल्लाह वालों के दिल में खुशी और सुकून होता है, अगर बादशाहों को इसकी खबर मिल जाए तो वो अपनी फौजें लेकर हमला करें और सुकून को छीनना चाहें। अल्लाह की याद में दिलों को सुकून है, किसी रंग में आप अल्लाह को याद कर लें। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब साथियों के दिलों के गम फिक्र दूर कर दें। जो भी साथी इस वक्त घरों में यहाँ ऑनलाइन बात में सुनेंगे, अल्लाह ताला उन सब को बेगम कर दें, बेखौफ कर दें। शर्त एक है, मुस्लिम और मुहसिन। पहले इस्लाम ले आइए, फिर ऐसा ऐसा अल्लाह आपको मुहसिन बना देगा। वकालत यहूद, बस इनकी खुशफहमियाँ ख़त्म हो रही है। हम दो तीन मिनट में ब्रेक ले रहे हैं, इंशाल्लाह जहाँ पे रुकना वहीं रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। यहूद कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं। अब यहाँ से ज़रा फ़िरका वारियत देखिए, तासुब, जमात, गिरोहबंदी, ये मुस्लिम, ये काफिर, हर वक्त लोगों को लड़ाने की कोशिशों में है। यहूद कहते हैं ईसाई कुछ नहीं, यानी हम इनको कुछ नहीं समझते। ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं है, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। यानी पढ़े लिखे लोगों का मिजाज देखिए, अपने सिवा किसी को हक पे नहीं समझ रहे और अपने सिवा दूसरों को जहन्नमी और काफिर कहते हैं। और इसी किस्म के दावे इन लोगों ने भी किए जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। फिरके वारियत, याद रखिए, जब आप एक रब के नहीं बनेंगे तो ज़रूर आप नफ्स के होंगे, ख्वाहिश के होंगे और दुनिया के बन जाएंगे। आज दुनिया में जितने मजहबी इख्तलाफात हैं, और अफसोस और दुख की बात है, मुसलमानों में आज जितने फ़िरके बन गए, आज जितने सेक्ट्स बन गए, ये सब वजह किताब से एराज की। जब किताब को समझने पे गौर करने से ज़्यादा इसके सिर्फ पढ़ने पे गौर किया जाता है और दिया क्या जाता है मोटिव कि कुरान पढ़ने वाली चीज़ थोड़ी है, औरतें तो नहीं पढ़ती, तफसीर के साथ तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो फिर याद रखिए हर बंदा अपनी मर्ज़ी की शख्सियत को चुनता है, अपनी पसंद के किसी इदारे, किसी गिरोह के साथ जुड़ता है और उसी को जीना मरना समझता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बातों का एक लाजमी नतीजा मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। आज देखिए मस्जिदों के नाम पे फिरका वारियत की छाप है, और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबूद खानों में इसके नाम की याद से रोके। इसको दुख के साथ सुनिए, मस्जिदों में जाकर भी अल्लाह की याद ना आए, इससे भी बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? आपके घर में कोई आए और उसको आपकी याद ना आए, इज़ इट पॉसिबल? आज लोग मस्जिदों में लड़ाइयाँ, झगड़े, इख्तलाफी बातें, मसलक की बातें, जमातों की बातें, गिरोहों की बातें, मैनेजमेंट के झगड़े, नमाजियों के प्रॉब्लम, हर बंदा कहता है कानून मेरे हाथ में आ जाए, अल्लाह कहते इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहाँ जाएँ भी तो डरते हुए जाएँ। इनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखरत में अजाब अजीम। क्या करो फिर, अल्लाह की तरफ झुको। मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। इनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। अल्लाह पाक इन बातों से असल हकीकत यह है कि ज़मीन व आसमान की तमाम मौजूदात इसकी मिल्क हैं, सब के सब इसके मती फरमान हैं, और वह आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है और जिस बात का वो फैसला करता है इसके लिए बस ये हुक्म देता है, क्या कुन, हो जा, फयकून, बस वो हो जाती है। इतनी कुदरत वाला मालिक है आपका। देखिए लोग कितनों के सामने माथा टेकते हैं, कितने लोगों के सामने अपनी दरख्वास्तें पेश करते हैं, अर्जियां पेश करते हैं, कुछ नहीं देंगे लोग। कि एक शख्स को बेचैनी थी, घबरा रहा था, किधर जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर मस्जिद सामने नजर आई, कहा चलो नफिल पढ़ लो। जब नफिल पढ़ने के लिए अंदर गया, वजू करके गया, तो देखा वहाँ एक शख्स बड़ा रो रो के दुआ कर रहा है। कानों में आवाज़ पड़ी, पता चला कि अपने कर्ज़े के दूर होने की दुआ कर रहा है कि अल्लाह तुझे पता है कि आज आखिरी दिन है, मैं कर्ज़ कैसे अदा करूँ, तू मेरी मदद कर। वो दुआ मांग के इधर हुआ तो इन्होंने पूछा क्या बात है, उसने कहा कुछ नहीं बस ऐसी बात थी। किस्सा मुख्सर, पता चला कि कर्ज़ा किसी से लिया हुआ और आज ना दिया तो ये मसला होगा। कितना कर्जा है? कहा चंद इतने हजार है। कहते मेरी जेब में इतने पैसे थे, मैंने उसको दे दिए। देते हुए साथ मैंने अपना बिजनेस कार्ड भी दे दिया। मैंने कहा कि अच्छा ये रख लो, जब कभी फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो उसने बगैर देखे उस बिज़नेस कार्ड को वापस करके कहा कि मेरे पास उनका बिज़नेस कार्ड है जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। फ़ैन्नमा मरुइज़ा अराद शैयन, याद रखिए रब से मांगिए, कभी किसी इंसान पे नज़रें ना लगाएं। वल्लाहि इतनी हैरत होगी आपको, इतनी हैरत होगी कि दिल की बात दूसरे के अंदर पहुंच के उसके वहां पहुंचने में पलक झपकने का वक्त होता है। ये देखिए ये खजूरें इधर रखी हुई हैं, ये बहुत ही मज़े की खजूर है, रुतुब है शायद। दो तीन दिन पहले ऐसा हुआ कि इरम ने ये मेरे आगे रखी, मैंने ये खाई, बहुत दिन बाद ये खाई तो मेरे सर हस्बैंड को भी पसंद है, तो मेरे दिल में उस वक्त आया कि ये बहुत अच्छी है, तो बस मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि इरम से पूछूंगी कहाँ से ली है। वल्ला ही ये बातें मैं क्लास में तफसीर के दौरान एक लम्हे के लिए ख्याल आई, और ब्रेक ख़त्म हुई तो ये नौरीन आंटी अपने हाथ में ही नहीं खजूरों का डब्बा पकड़ के मेरी तरफ आई, डांट खा के गई, मैंने नहीं ली इनसे, इनको पता मैं नहीं इधर लेती कोई ऐसी चीज़ इनसे। लेकिन जब मैंने इनके हाथ में खजूरों का डब्बा देखा, मेरा यकीन करे रंग फक हो गया कि कहीं मेरे मुँह से तो नहीं बात निकल गई। अल्लाह को यकीन कीजिए, अगर आप अल्लाह से मांग के तो देखिए, आपको तो हाथ भी नहीं हिलाने पड़ेंगे। ये तो मुश्किलें हमारी अपनी पैदा करता है। तो जिसको अल्लाह के साहिब कुन फयकून होने का यकीन आ जाएगा, वो बंदगी के आला मुकाम पे आएगा। बदीउस समावाति वल अर्दि वइज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून वक़ाला अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाह। नादान कहते हैं अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता। देखिए ज़रा छोटा मुँह बड़ी बात, कहते हमसे खुद ड्रग बात करें, तकब्बुर की अलामत है, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं भेजता। कज़ालिका क़ाला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसी ही बातें इनसे पहले भी लोग किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़हनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियाँ साफ साफ नुमायाँ कर चुके हैं, इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्मे हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं, इनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। यहूद और नसारा तुमसे कभी राजी ना होंगे जब तक कि तुम इनके तरीके पर न चलने लगो। इसको हाईलाइट कर लो, ये अल्लाह का फरमान है, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। इनको खुश करना है तो एक ही रास्ता है, तभी मिल लेता हूँ, तुम इनके फुटस्टेप पे चलो, इन जैसे बन जाओ। तो चलना है नहीं, कुल कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कह दीजिए रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया। हाईलाइट करें, जब कोई कल्चर आपको अपनी तरफ बुलाए तो आपने मैंने यही जवाब देना है कि मेरे लिए अल्लाह का बताया हुआ तरीका, उसका लिबास, उसका रंग ढंग, वो सब कुछ बेहतर है। वरना करे इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई मददगार और दोस्त तुम्हारे लिए नहीं। यहाँ आप देखिए कि इस आयत में दूसरों की खुशी की बात है कि किसको किसके पीछे लगेंगे तो क्या होगा। तो चला थोड़ी सी इबादत की मज़ीद बात नोट कीजिएगा। अबूदियत के बातों में आज की हमारी बात क्या है, इबादत क्या होती है। कल हमने देखा था कि हर वो अमल और फ़ेल जिसको करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और जिससे रुकने का हो, और इसका ताल्लुक हर चीज़ में आता है, मामलात, इबादत और दूसरी चीज़ों में। किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करना भी इबादत बन जाता है न, तो आप कह सकते हैं कि इबादत वो फ़ेल है, लिखिए, जिसकी असास यानी बुनियाद, जिसकी रूट अल्लाह की रज़ा की तलब और उसकी नाराज़गी से बचना हो। ठीक है, हर वो फ़ेल जिसमें अल्लाह की रज़ा लेना और अल्लाह की नाराज़गी से रुकना मकसूद हो, वो इबादत बन जाता है। कैसे? इंसान का हर वो काम इबादत है जिस काम के करने से अल्लाह खुश हो जाए, हर वो बंदा जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उससे मोहब्बत करना इबादत है, हर वो हाल जिस हाल से अल्लाह मोहब्बत करे इसको अपनाना इबादत है, हर वो ज़ौक जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसको इख्तियार करना इबादत है, हर वो शौक़ जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसको सीखना इबादत है। आपने फील की इबादत का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। हर काम, हर हाल, हर ज़ौक, हर शौक़, हर मोहब्बत इबादत है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इबादत का ताल्लुक़ सिर्फ मज़हबी अफ़ाल से नहीं है, माशरती अफ़ाल से भी है। यानी सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, रिलीजियस एक्ट्स का नाम ही सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि सोशल लाइफ, सेक्युलर लाइफ के जो मामलात होते हैं ये भी इबादत है। जितना एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी को लाता रहेगा वो उतना ज़्यादा आबिद बनेगा और उतना ही बंदगी का रंग उसके अंदर आएगा। और याद रखिए कि इबादत में रूहानियत भी होती है और इबादत के अंदर तरीक़ाकार भी होता है। इन दोनों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अंदर रहकर इबादत करेंगे तो इंशाल्लाह खैर होगी। इस आयत में जो कहा कि गैरों की परस्तिश करोगे, पैरवी करोगे, तो अगर इसके मुकाबले में हम अपने इस्लामिक अटायर पे जम जाते हैं, हमें अपना इस्लामिक गेटअप बहुत अच्छा लगता है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपका इबादत होगा। बस दफ़ा सिर्फ इसलिए इंसान बाहर जाके कहीं घूमता है किसी जगह बैठने की बजाय कि मुझे देख लो, आई एम अ मुस्लिमा, मुझे कोई शर्म नहीं आती। बस किन कर एयरपोर्ट्स पर लोग होते हैं इधर उधर बैठे, कुछ लोग होते हैं कहते हैं चिपक के बैठ जाओ, हम जिधर से गुजरते हैं लोग हमें देखते हैं, तो मुझे कभी इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि एक बंदा नंगा फिर रहा है, थोड़े से कपड़े पहन के फिरता है, उसको शर्म नहीं आती, तो मैं तो छुपी हुई हूँ, मुझे क्या शर्म आए। तो लोगों की नज़रों से ख़ुद को बेनियाज करना ये भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह की नज़रें आपके ऊपर लगती हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुम अल-किताब यतलूनहु हक्क तिलावतिही, वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इसको इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि इसके पढ़ने का हक है, वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो इसके साथ कुफर का रवैया अख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। किताब को पढ़ने के हक हैं, किताब को पढ़ने का हक यह है, इस पर ईमान रखा जाए, फिर इसको ठीक पढ़ा जाए, फिर इसको समझा जाए, फिर इसके ऊपर अमल किया जाए, और फिर इसकी दावत दूसरों को दी जाए। ये मैंने अपनी पांच उंगलियों पर गिना है, आप अपनी पाँच उंगलियों पर लिख लें, खुद से सवाल कीजिए, कल क़यामत के दिन जब ये किताब मुझसे हक मांगेगी तो मेरे किसी हक में कोई कमी तो नहीं है। जो पहलू किताब का कमज़ोर है उस पर गौर फिक्र कीजिए, अल्लाह ताला खुद आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला।